पृष्ठ 19 काव्य का अध्ययन कवि के प्रति सहानुभूति। कवि और पाठक के भाव साम्य में ही काव्य की पूर्णता है। कविता चाहे जितनी स्वांत सुखाए लिखी जाए, कवि का परिश्रम तभी सार्थक होता है जबकि उसकी कविता का कोई रसास्वाद करे। गोस्वामी तुलसीदास जी बुद्ध जनों के आदर की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। जैसा रस कवि के हृदय में होता है, वैसे ही रस की जागृति पाठक के हृदय में भी उपेक्षित है। कविता के रसास्वाद के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों में सबसे पहले कवि के प्रति सहानुभूति चाहिए। हमारे निजी विश्वास चाहे जो कुछ हो, हमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसकी कृति का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम कविता का आनंद ले सकेंगे। सूर और तुलसी के अध्ययन के लिए हमको भक्त का ही मानसिक बाना धारण करना पड़ेगा। जो लोग प्राचीन कवियों की कृतियों को आजकल के आदर्शों से नापते हैं, वे भूल करते हैं। कवि तो हम अपने ही समय के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता है। वह दिव्य दृष्टा अवश्य होता है, किंतु उसकी दिव्य दृष्टि किसी अंश में सीमित होती है। इसलिए कृति को अध्ययन करने से पूर्व कवि के समय के वातावरण का अध्ययन भी उपेक्षित रहता है। कवि के साथ सहानुभूति रखने में यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करें। सामाजिक आदर्श बदलते रहते हैं। कवि का सामाजिक आदर्श हमारे युग का सामाजिक आदर्श हो सकता है। फिर भी कवि को पूर्णतया समझने और उसकी आलोचना करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके ही दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करें। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी कवियों के दृष्टिकोण से अपना तादात्म्य कर सके। पृष्ठ 20। पाठक के रुचि वैचित्र को हम भुला नहीं सकते, किंतु यदि पाठक किसी कवि का पूर्णतया रसास्वाद करना चाहता है तो उसको कम से कम अध्ययन के समय अपनी रुचि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपनी रुचि को चाहे न बदल सके, किंतु अपने मानदंडों से कवि की आलोचना करने से पूर्व उनको अपने मन में यह समझ लेना चाहिए कि कवि अपने समय के वातावरण का प्रतिफलन होता है। कुछ कवि अपने समय के आगे जा सकते हैं और कुछ नहीं। जाति पाति के संबंध में समय से आगे जाने वाले कबीर भी नारी के संबंध में अनुदार रहे, फिर बेचारे तुलसीदास जी को ही क्यों दोषी ठहराया जाए। उन्होंने या कबीर ने भी जहाँ स्त्री की बुराई की है, वहाँ उस जाति मात्र की इतनी नहीं जितनी की काम वासना की बुराई व्यंजित है। जीवन का परिचय। कवि के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन तथा उसके समय के वातावरण से परिचित होना नितांत आवश्यक है। निजी जीवन के अध्ययन से हम उसकी मानसिक परिस्थितियों को जान सकेंगे जिनके वश वह अपने काव्य की रचना में प्रेरित हुआ है। कविवर सत्यनारायण जी के निजी जीवन से लोग परिचित हैं। वे इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि वे उत्तर रामचरित के अनुवाद में क्यों सफल हुए। उनके दुख में जीवन ने करुण रस को उनकी प्रतिभा का एक अंग बनाया दिया है दिया था। कबीर के अखड़पन से उनके जुलाहे परिवार में पालित पोषित होने की ही प्रतिक्रिया मालूम होती है। वैयक्तिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त कवि पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। भूषण की कविता में जो उगता है वह तत्कालीन परिस्थितियों का ही फल कही जा सकती है। प्रतिभा और शैली। रसास्वाद के लिए कवि की प्रतिभा को विशेषताओं से जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक कवि अपने समकालीन अन्य कवियों से कुछ विशेषता रखता है। उसकी अभिव्यक्ति की शैली में भी विभिन्नता रहती है। पाठक को यह देखने की आवश्यकता रहती है कि कवि ने हमको क्या नई चीज दी अथवा पुरानी ही चीज को उसने किस ढंग से कहा, उसको कौन से रस में विशेष सफलता मिली है और किन भावों के प्रस्फुटन में उसकी प्रतिभा की स्फूर्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इसके लिए हमको कवि की एक ही कृति का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। उसकी समस्त कृतियों से ही उसकी प्रतिभा का पूर्णतया अनुमान किया जा सकता है। प्रतिभा के अध्ययन में हमको तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना पड़ेगा। कवि के प्रतिभा को माप जोख के लिए हमको समकालीन कवियों से और कभी कभी उसी विषय के भिन्न कालीन अन्य कवियों से भी तुलना करनी पड़ती है। तुलनात्मक प्रणाली से ही कवि की देन का यथार्थ मूल्यांकन हो सकता है। जीवन की व्याख्या। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने एसे और वर्ड्सवर्थ शीर्षक पृष्ठ 21 निबंध में कविता को जीवन की व्याख्या या आलोचना कहा है। पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यद्यपि कवि द्वारा की हुई जीवन की व्याख्या दार्शनिक और समाजशास्त्री की व्याख्या से भिन्न है, तथापि कवि जीवन की व्याख्या किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि काव्य जीवन धारा का ही तो मुखरित रूप है। प्रत्येक कवि ने अपना जीवन दर्शन देने का प्रयत्न किया है, किंतु एक निजी उल्लास के साथ, और यही उल्लासमयता कवि की व्याख्या की विशेषता है। कवि बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता है, किंतु वह नीरा बौद्धिक प्राणी नहीं है, वह रस का सृष्टा है, उसकी व्याख्या भी रसमयी होती है। मैथ्यू अर्नोल्ड की परिभाषा में बुद्धि तत्व को कुछ अधिक प्रधानता मिली है। हमारे यहाँ रस तत्व की प्रधानता है, किंतु वह रस जीवन का ही रस है, जो कवि और पाठक दोनों के हृदय को आप्लावित करता है। संदर्भ 1 वागर्थावे संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो रघुवंश। 2 द स्कॉट जेम्स की मेकिंग ऑफ लिटरेचर नाम के पुस्तक के पृष्ठ 22 के उद्धरण से उद्धृत है। समाप्त।